उस जागी हुई चेतना के साथ जैसी घटना घटित होती है। एक बहुत छोटा सा बेटा था और उसके झोपड़ी के सामने एक वृक्ष था और वो बेटा उस वृक्ष के नीचे रोज खेलने चला जाता था। पता नहीं कब क्या हुआ, कब कैसे घटित हुआ कहा नहीं जा सकता, पर उस वृक्ष को कहते हैं कि उस छोटे से बेटे से स्नेह हो गया और वे दोनों एक मित्र की तरह रहने लगे। वृक्ष का कोई मित्र हो सकता है, उस छोटे से बेटे का कोई मित्र हो सकता है जो कुछ नहीं समझता कि मित्रता के मायने क्या होता है, पर उसे अच्छा लगता है उस पेड़ के पास बैठना, उस पेड़ के चक्कर डालना, उस पेड़ की पत्तियों को और फूलों को देखना। और धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होना शुरू होता है, पर अब तो वो इतना बड़ा हो गया है कि अपना हाथ बढ़ा करके पेड़ की नीचे झुकी हुई डालियों को छू लेता है। और लोगों ने तो कई बार ऐसा देखा कि जब उस छोटे से बेटे ने बहुत गौर से पेड़ की तरफ देखा और कोई लगा हुआ फल पाना चाहा, तो ऐसा लगा जैसे कि उस पेड़ ने अपनी डाल को थोड़ा सा नीचे कर दिया हो और उसने एक फल तोड़ दिया हो। मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, लेकिन कहीं कभी ऐसा घटित हुआ होगा तब तो वो कहानी बनी है। हमारे जीवन में ऐसा कभी घटित नहीं हुआ, हमने तो कभी किसी व्यक्ति की तरफ भी हाथ बढ़ाया है तो सिवाय दुत्कार के, या कि किसी ने हमारे प्रति हाथ बढ़ाया है तो सिवाय दुत्कार के हमने उसे कभी कोई मीठा फल तो देने की कोशिश ही नहीं की। हमारी चेतना में ऐसा कभी आए ही नहीं। लेकिन वो कैसी पवित्र चेतना रही होगी कि जिसकी तरफ जरा सा उस छोटे बेटे ने हाथ बढ़ाया और उसने अपनी डाल झुका दी कि लो जो चाहो इसमें से ले सकते हो। और एक दिन वो और बड़ा हो गया बेटा, पर अब इतना बड़ा हो गया कि उसे पेड़ के पास आने की फुर्सत नहीं मिलती थी। देखो तो हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें अपने संबंधों के बीच की आत्मीयता भी नष्ट करना पड़ती अपने हाथ से। फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है कि जिससे हमने दो बातें सीखी उसके चरणों में बैठने की फुर्सत मिल जाए, जिस परमात्मा की ऊंचाई पाने के लिए परमात्मा से चार बातें सुन लेता हूं उनके चरणों में दो क्षण बैठने का समय भी नहीं मिलता। इतने व्यस्त हम हो जाते हैं, इतने बड़े हम हो जाते हैं। और वो बेटा भी बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसको बहुत सारे काम करना है। होता होगा कोई वृक्ष और होती होगी उस वृक्ष की कोई आत्मीयता और उसके पास बैठने की इच्छा। अब नहीं जाता था, पर वृक्ष जैसे आवाज देता था कि आओ मित्र आओ, आते क्यों नहीं। और एक दिन जब उस रास्ते से वो बड़ा होकर के लड़का निकला तो उस वृक्ष ने आवाज दी कि आओ मित्र, अब तो तुम पहले की तरह मेरे पास बैठती नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब मालूम उस बड़े हो गए बेटे ने इतना ही कहा था कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं, क्या तुम मुझे रुपए दे सकते हो। पता नहीं वृक्ष बोलता था कि नहीं बोलता था, पर लगता मुझे ऐसा है कि वृक्ष बोलता होगा। वृक्ष नहीं बोलता होगा तो आदमी की जिंदगी तो बोलती है। पत्थर की मूर्ति नहीं बोलती होती तो काय को उसके पास जाकर के बैठते। बोलती है, मैं कहता हूं बोलती है। आपको बुलवाना आना चाहिए, आपको उससे बात करना आना चाहिए। और जैसे ही उसने कहा कि मैं तुमसे रुपए चाहता हूं, उस वृक्ष ने कहा कि रुपए तो मैं दे नहीं सकता, पर सुनो ऐसा करो मेरे इस पर सैकड़ों फल लगे हैं, इन सब को तोड़ करके ले जाओ, बाजार में बेच देना, तुम्हें बहुत रुपए मिल जाएंगे। और कहते हैं कि उस दिन से उस बेटे का आना रोज शुरू हो गया। हमारा आना भी तो उसी के पास तक रहता है जिससे हमारा काम सटता है, बाकी किसी के पास जाना कहां रहता है। महाराज जी के पास क्या करना, जाकर के क्या दे देंगे, क्या दुकान का इजाफा करवा देंगे, क्या कोई मंत्र दे देंगे जिससे कि हमारी दुकान अच्छी चल जाएगी, क्या करना। मोक्ष मार्ग उनके चरणों में बैठ करके बनेगा, इसकी फिक्र करने वाले थोड़े से लोग ही हैं। और रोज उस बेटे ने आना शुरू किया, रोज फल उतरना शुरू हो गए और बिकना शुरू हो गए, पैसा आना शुरू हो गया। और एक दिन तो वृक्ष पर जितने फल थे वो सब तोड़ लिए गए, अब वृक्ष कहां से लाए। बस जिस दिन फलों की आखिरी खेप भर करके गई, उसी दिन से फिर उस बेटे का आना बंद हो गया। वृक्ष फिर भी आवाज देता था कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं हो, बताओ मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूं। कोई हमें देने के लिए निरंतर उत्सुक है, पर हमारी पात्रता ही नहीं है कि हम उससे ले सकें। हमारा जीवन हमें निरंतर कोई ना कोई शिक्षा देने के लिए तत्पर है, लेकिन हम अपने ही जीवन से कोई शिक्षा लेने के लिए जरा भी तत्पर नहीं है। सब तरफ से ऐसा लगता है जैसे जीवन हमें संदेश दे रहा हो, हर घटना हमें जीवन का संदेश देती है, लेकिन हमारी इतनी योग्यता ही नहीं है कि उससे हम कोई संदेश लेकर के अपने जीवन को उज्जवल और पवित्र बना सके। और एक दिन फिर उस वृक्ष के नीचे से जब वो बेटा निकला तो वृक्ष ने आवाज दी, उसकी पगचाप सुनकर के वो पहचान गया। लेकिन यहां तो रोज कोई हमारे जीवन में पगचाप देता है और हम पहचान ही नहीं पाते। इतना वक्त हमारे पास नहीं है, इतने हमारे कान सुनने के लिए आतुर नहीं है कि कोई हमारे निकट से निकला है उसकी आवाज हम सुन सकें। पर वृक्ष ने आवाज सुन ली कि वो उसका मित्र गुजर रहा है, उसने आवाज दी कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं हो। उसने कहा क्या करूंगा आकर के, क्या है तुम्हारे पास जो तुम दे सकते हो। कितने स्वार्थी हो गए हम हर एक से यही चाहते हैं कि हम तुम्हारे पास आए हैं, क्या दे सकते हो तुम। उसने कहा दे क्या सकता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे एक घर चाहिए, तुम घर दे सकते हो। घर तो नहीं दे सकता, पर चाहो तो ये मेरी शाखाएं तुम ले जाओ, इनको काट के ले जाओ, इसकी लकड़ी से हो सके तो अपना घर बना लेना। दूसरे की जिंदगी को काट काट के भी अगर हमारा घर बनता हो तो हमने बनाया है। दूसरे के जीवन को नष्ट करके अगर हमारा जीवन बना है तो हमने बनाने की कोशिश की है, क्या यही चेतना हमारी है। ये तो बहुत गई बीती चेतना है, कैसे उसने स्वीकृति दे दी कि दूसरे के जीवन को नष्ट करके अपना जीवन बनाना, दूसरे को तकलीफ में डाल करके और अपने जीवन को सुखी बनाना। ये चेतना कहां से हमारे भीतर डेवलप हो गई, ऐसी चेतना तो नहीं थी हमारी, चेतना की ऐसी एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं थी। फिर आखिर क्या हुआ, कभी हमने सोचा अपने भीतर झांक करके। जब जब भी मन ऐसा करने को कहता हो तब का कोई भीतर की चेतना नहीं कचोटती कि क्या करते हो, नहीं कचोटती तो इसके मायने है कि अभी सोई हुई है चेतना, बहुत सतह पर कुछ थोड़े से काम करके और हमने अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया है, भीतर से हम बहुत सोए हुए हैं। और फिर तांता शुरू हो गया, फिर गाड़ियां आने लगी और वृक्ष कटने लगा। देखते देखते वृक्ष की सारी शाखाएं काट दी गई, पर वृक्ष फिर भी खुश है कि वो अपने मित्र को कुछ दे सका। ऐसे जीवन भी आज हैं जो हमें निरंतर देते हैं और खुश रहते हैं कि किसी के काम आ सके, पर हमारा अपना जीवन इस बात से कभी खुशी नहीं हो पाता कि किसी के जीवन में हम कुछ कर सके। और जब सारी शाखाएं कट गईं, वृक्ष के नाम पर एक ठूंठ रह गया, तब फिर वो मित्र उसे फिर छोड़ के चला गया। अब फिर उसका आना बंद हो गया। तभी तक आते थे जब तक कि स्वार्थ था। वृक्ष निरंतर आवाज देता था कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं, मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें। और एक दिन वो बूढ़ा हो गया, वो जो छोटा सा बेटा था, वृक्ष में तो एक आध दो ठो पी के फूटे, पर वृक्ष उतना बड़ा नहीं हो सका। लेकिन वृक्ष की चेतना अभी भी उतनी ही उज्जवल थी जो आवाज देती थी कि आओ मित्र, आते क्यों नहीं। और एक दिन जब वहां से वो बूढ़ा बेटा गुजरता था, तब वृक्ष ने फिर आवाज दी कि आओ मित्र, कहां जाते हो, मुझसे कहो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे दूर देश की यात्रा करनी है, बीच में मुझे नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, तुम नाव दे सकते हो। उसने कहा नाव तो तुम बना सकते हो, पर नाव बनाने के लिए लकड़ी मैं दे सकता हूं। अभी भी मेरे पास जो थोड़ी सी लकड़ी बची हुई है जो सूख चुकी है, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी और बहुत हल्की है, लो इसे भी काट लो। और उस बेटे ने, जो अब बूढ़ा हो गया था, जरा भी तो नहीं सोचा कि उस पेड़ का जीवन शेष रहेगा या नहीं रहेगा। कहते हैं कि नाव बनाने के लिए उसने वो जो थोड़ा सा ठूंठ था वो भी तराश लिया और नाव बन गई। वहीं बैठे बैठे नाव बनाई उसने और वृक्ष खुश है। अभी उसकी सांसें शेष हैं और वो देख रहा है कि उसका मित्र दूर देश की यात्रा के लिए जा रहा है, नाव बना रहा है, वो जाएगा। और जब वो मित्र जाने लगा तो उसने कहा मित्र, कभी हो सके तो वापिस लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और कुछ दे सकूं, तुम और कुछ मेरे से पा सको, मैं हमेशा ये भावना बना रखूंगा। और वो विदेश की यात्रा पर निकल गया। जो भी यात्री कहते हैं रास्ते से उस ठूंठ के पास से निकलता, वो हर यात्री से पेड़ पूछता कि तुम्हें मेरा मित्र मिला था, वो यात्रा करने गया है, बस आता ही होगा, मेरी तो सांसें दो चार शेष हैं, कहीं मिले तो कह देना कि आओ तुम्हारा मित्र तुम्हें याद करता है। कैसी होगी उसकी चेतना, मैं तो सोच करके दंग रह जाता हूं। हमारी चेतना का ऐसा परिष्कार क्यों नहीं होता कि प्राणी मात्र को हम अपना मित्र मान सकें और प्राणी मात्र के सुख दुख में अपने सुख दुख का एहसास कर सकें। और एक दिन वो लौट आया और जब वो मित्र वापिस लौटा तो आधी रात वापिस लौटा, पर उस पेड़ के नीचे से गुजरता था, उस ठूंठ में अभी भी जान थी, उसने पगचाप से पहचान लिया कि मित्र लौट आया, यात्रा से वापिस लौटा। उसने कहा आओ मित्र, मैं तुम्हारा इंतजार करता था, तुम वापिस लौट आए, कैसी रही तुम्हारी यात्रा। बोले कैसी रही यात्रा, तुम कौन होते हो पूछने वाले कि कैसी रही यात्रा। अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, अभी मुझे घर जाना है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है मेरी ठंड दूर करने का, जो तुम मुझे अपना मित्र कहते हो? अब वो क्या कहे वृक्ष? उसने कहा, सुनो मित्र, मेरी सांसें तो दो चार ही शेष रहीं, तुम्हारे आने का इंतजार था। ये जीवन तो वैसे ही नष्ट होने को है, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी आग है, माचिस है क्या? और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मैं क्या कहूं आपसे। उस व्यक्ति ने अपने पॉकेट से माचिस निकाल के उस थोड़े से ठूंट में भी आग लगा करके सारी रात अपनी ठंड मिटाई, लेकिन वो वृक्ष आखिरी सांस तक और हर्षित हुआ कि मेरा जीवन किसी के काम आया। हमारा जीवन हमारे ही काम नहीं आ रहा, किसी और के काम क्या आएगा? हमारी चेतना क्यों नहीं इतनी जागृत हो पाती कि हम प्राणी मात्र को अपना मित्र बना सकें? शायद धर्म की शुरुआत तभी हो सकेगी जब हमारे भीतर ऐसी चेतना जागृत होगी जो सबका ख्याल रख सके और अपने जीवन को ऐसे सबके ख्याल रख करके पवित्र कर सके।